ओम शांति। बाप दादा, हम बच्चों को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवता बना रहे हैं और उन्हें सर्व गुणों में संतुष्टता भी एक गुण है जिसे हम सभी गुणों का राजा कह सकते हैं, क्योंकि अगर संतुष्टता का गुण जीवन में है तो कहेंगे संतोषी सदा सुखी। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी जीवन में उतार चढ़ाव हो, जिसको हम कहते हैं निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख, हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न। जो भी संसार में आध्यात्मिक व्यक्ति हुए हैं, जिन्हें हम भारत में संत कहते हैं, भगवान के परम भक्त कहते हैं, उन्होंने इस गुण को अपने जीवन में बहुत महत्व दिया। कबीर दास जी का एक दोहा है, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। कि जब संतोष रूपी धन आ जाता है जीवन में तो अन्य सभी धन उसके पीछे फीके पड़ जाते हैं। और हम बाबा के बच्चों के लिए संतुष्टता की परिभाषा थोड़ी सी अलग है। हमें बाबा कहता है कि आप सर्व प्राप्ति संपन्न हो, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ऐसा है क्योंकि जहां सर्व प्राप्ति है वहां संतुष्टता है ही है, जहां अप्राप्ति होती है वहां असंतुष्टता आती है। तो चार प्रकार की प्राप्तियां या चार प्रकार के भाग्य बाबा ने हमें बताए हैं, तन मन धन और जन। तो ये चारों प्राप्तियां सिर्फ संगम युग पर ही नहीं लेकिन आने वाले 21 जन्मों के लिए गारंटी के साथ, और फिर कल्प में भी, पूरे कल्प में भी कभी भी हमारा भाग्य कम नहीं होने वाला है। यानी ये अप्राप्तियां हमें नहीं होने वाली हैं, वो बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। तो इसका अर्थ है कि हमारी प्राप्ति बेहद की है, हद की नहीं। और जिसके पास इतनी अविनाशी प्राप्ति हो, उसके आगे हद की प्राप्तियां क्या हैं? जैसे कहेंगे सूरज निकला हुआ है और उसके आगे अगर आप दीपक दिखाएंगे तो दीपक का प्रकाश क्या है? वो दीपक का प्रकाश काम करेगा? तो इसीलिए ब्राह्मण बनने के बाद बाबा ने हमें बेहद की प्राप्तियों का अनुभव कराया है, बेहद के खजानों का अनुभव कराया है। है सभी के पास बेहद के खजाने? ज्ञान का खजाना है, गुणों का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, समय का खजाना है, संकल्प का खजाना है, और ये सब अविनाशी कमाई जन्म जन्मांतर हमारे साथ है अगर ये स्मृति हमें रहती है। यदि हम स्मृति स्वरूप हैं तो हम संतुष्ट रहेंगे, और यदि हम इन बेहद की प्राप्तियों से विस्मृत हो जाते हैं, भले ब्राह्मण हैं और हद की प्राप्तियों में चले जाते हैं, तो फिर कोई ना कोई असंतुष्टता हम अपने जीवन में अनुभव करने लगते हैं। तो वैसे तो कहेंगे परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले, परमेश्वर की वो मिल गया तो और क्या चाहिए, या कहेंगे पाना था सो पा लिया। तो समस्त संसार बाबा में समाया है, संसार में व्यक्ति और वैभव होता है, तो सर्व संबंध बाबा से हैं और सर्व जो स्थूल सूक्ष्म प्राप्तियां हैं वो भी हमें बाबा से हैं। अगर ये निश्चय है, ये अनुभूति है, ये खुशी है, ये नशा है, तो हम कभी भी असंतुष्ट नहीं हो सकते। और सभी को है, बाबा ने ऐसे नहीं एक को प्राप्ति दी है दूसरे को नहीं दी, सभी को एक के द्वारा, एक जैसा, एक ही समय सभी खजाने दिए हैं। हाँ, भले कोई 7 दिन का कोर्स किए हुए हैं, वो कहेंगे हम तो अभी ज्ञान में आए हैं, हमें कैसे सर्व प्राप्तियां हैं। तो बाबा कहता है जिस दिन आपको निश्चय हो गया शिव बाबा मेरा पिता है, शिक्षक है और गुरु है, उस घड़ी से ही आप वारिस हो गए, बाप के वर्से के अधिकारी हो गए। तो हम सभी को सर्व प्राप्तियां बाबा ने दी, लेकिन फिर भी हम सब नंबरवार हैं। सभी संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं, कोई ना कोई बात में असंतुष्ट हो जाते हैं। तो वैसे तन मन धन संबंध में बाबा ने जो हमें तन की प्राप्ति की अनुभूति कराई है, तो आने वाले 21 जन्म ये तन सदा स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, दीर्घायु होंगे, ये तो गारंटी है। लेकिन वर्तमान संगम युग के समय पर भी हम तन को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि आज 70% बीमारियां डॉक्टर कहते हैं टेंशन से होती हैं। और मन को स्वस्थ रखने की कला बाबा ने हमें सिखाई है। हम अपने सारे फिकर और चिंताएं बाबा को देकर के बेफिक्र रह सकते हैं, निश्चिंत रह सकते हैं। तो यदि हमारा मन स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, मन बाबा की याद में है, तो तन की होने वाली बीमारियां भी कम होंगी। जो साइकोसोमेटिक बीमारियां कहते हैं वो बीमारियां अपने आप कम होंगी। और यदि होती भी हैं, मानो कोई बीमारी होती है, आजकल ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियां तो बहुत कॉमन बीमारियां हो गई, हर तीसरे चौथे व्यक्ति को ये बीमारियां हैं आज के समय में। तो फिर अगर बीमारी है तो फिर साइंस भी इतनी डेवलप हो गई है आज के जमाने में, जो मेडिकल साइंस है उसने इतनी प्रोग्रेस की है कि इन सब बीमारियों का बहुत अच्छा इलाज है। आप डॉक्टर से दवाई लेते हैं और दवाई खा के बिल्कुल नॉर्मल जीवन जीते हैं। वो जो हमें डाइट एक्सरसाइज बताते हैं उस अनुसार यदि हम लेते हैं, तो बाबा हमें गोलियां खाने के लिए मना नहीं करते। बाबा कहते हैं ये जो कलयुग की गोलियां हैं ये सब क्या हैं? क्या हैं ये? ड्राई फ्रूट हैं। जैसे हम ड्राई फ्रूट खाते हैं, ऐसे ही ये कलयुग के ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको ड्राई फ्रूट समझ के खा लो। ऐसे नहीं, अरे मेरे को तो ये 2-2, 4-4 गोली रोज खानी पड़ती है, कब तक खानी पड़ेगी? और यदि हम भारी होकर के वो दवाई खाएंगे तो हम कैसे संकल्प दे रहे हैं उस दवाई को, क्योंकि प्रकृति पर हमारे संकल्पों का प्रभाव पड़ता है, तो उस दवाई का असर उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन यदि आप उसे कलयुगी फ्रूट समझ करके खा लेते हैं, सामने जो भाई बैठे हैं प्लीज बात नहीं करें, तो फिर वो दवाई का असर भी हमारे बीमारी पर अच्छा होता है, हम जल्दी स्वस्थ होते हैं, या कम दवाई में ही हमारी वो बीमारी कंट्रोल में आ जाती है। फिर दूसरी चीज, बाबा ने हमें दुआ बताई है। हम जितना बाबा की याद में रहते हैं उतना ही बाबा कहता है कि योग बल से आपकी आयु बढ़ती है, तो योग से हम अपने मन को नियंत्रण कर पाते हैं और उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, मन स्वस्थ होता है। तो इस तरह से कर्म भोग को हम कर्म योग से सूली से कांटा बना करके सहज चुक्तु कर सकते हैं। ये विधि भी हमारे पास है, तो दवा और दुआ दोनों साथ को साथ में प्रयोग करके हम तन को स्वस्थ रख सकते हैं। कई बीमारियां तो बहुत छोटी मोटी होती हैं, आती हैं, थोड़ी दवाई खाई ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो क्रॉनिक होती हैं, जिनके लिए हमें पूरा जीवन भर दवाई लेनी पड़ती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो असाध्य होती हैं, मानो किसी को कैंसर हो जाता है तो फिर उसे असाध्य बीमारी मानी जाती है, या ऐसी ही कुछ इस तरह की बीमारियां भी हैं आजकल जो बहुत जानलेवा होती हैं, जैसे किसी को स्वाइन फ्लू हो गया, कुछ इस तरह की बीमारी। तो उसमें भी यदि हम अपने मन को प्रसन्न रख पाते हैं बीमारी के समय, तो वो बीमारी इतना विकराल रूप नहीं लेती है, यानी दुख में भी सुख की स्थिति का अनुभव करने की शक्ति हमें ज्ञान योग से मिलती है। उस समय भी अगर हम बाबा की याद में रहते हैं, मानो कोई ऐसी बीमारी हो जाती हमें या हमारे परिवार में किसी को, कभी ऐसे होता है कि जो हमारे बहुत करीबी हैं उनको अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाती है तो भी हम असंतुष्ट हो जाते हैं, तो भी हम टेंशन में आ जाते हैं। तो बाबा ने हमें सिखाया है कि इस तन के हिसाब किताब को भी हमें साक्षी होकर के कैसे चुक्तु करना है। मैं आत्मा देह से न्यारी हूं, ये ज्ञान ये समझ हमें अभी है, तो हम जब चाहें अपने आप को अशरीरी स्थिति में स्थित कर सकते हैं, शरीर से हम अपने आप को डिटैच कर सकते हैं। और जितना हम अशरीरी स्थिति का अभ्यास पक्का करते हैं, उतना हम तन से अलग समझ करके, ये तन का अपना हिसाब किताब है, ये प्रकृति के तत्वों का हिसाब किताब है, ये सब अभी हमें खत्म करना है, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है। ऐसे साक्षी होकर के हम वो हिसाब किताब चुक्तु कर लेते हैं, जैसे हम अपनी दादियों को देखते हैं, अपने वरिष्ठ जनों को, कितना सहज रीति, क्योंकि कर्म का हिसाब किताब 63 जन्मों का सबके सामने आता है, चाहे वो हमारी दादियां हैं, चाहे वो हम भाई बहने हैं, सेंटर पर रहने वाले, प्रवृत्ति पर रहने वाले, जो भी हैं। तो हम संतुष्ट होकर के प्रसन्नता से बहुत सहज भाव से अपने वो हिसाब किताब भी चुक्तु कर सकते हैं। संगम युग पर बाबा ने वो हमें समझ दी है, वो तीनों कालों का ज्ञान हमें मिला हुआ है। मन सदा संतुष्ट रहे, उसके लिए मन मना भव की विधि है ही, सदा हम ट्रस्टी रहें, सारी जिम्मेवारी बाबा की है, करण करावन हार वो है, हम कर रहे हैं, मन हल्का रहेगा, डबल लाइट स्थिति में हमारा मन रहे, हम संतुष्ट रह सकते हैं। ऐसे ही धन व्यक्ति को बहुत असंतुष्ट करता है, क्योंकि आज के जमाने में धन आवश्यकता है और महंगाई का जमाना है, और उसके साथ साथ इतने विज्ञान ने साधन दिए हुए हैं कि हर मनुष्य की इच्छा होती है सब कुछ मुझे मिलना चाहिए, कोई भी साधन ऐसा ना हो जो मेरे पास मुझे प्राप्त ना हो, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हम लोभ में भी चले जाते हैं। ब्राह्मणों को धन का लोभ नहीं होता है कि मैं कोई करोड़पति बन जाऊं या अरबपति बन जाऊं, अविनाशी कमाई की समझ हमें आ जाती है कि ये कमाई साथ नहीं जाने वाली है, लेकिन जो अविनाशी कमाई है वही साथ जाने वाली है। तो हम धन के पीछे बहुत भागदौड़ वाली जिंदगी अब नहीं जीते हैं, जैसे दुनिया वाले लोग धन के पीछे ही सारा टाइम बोलेंगे कि भगवान का ज्ञान थोड़ा सुनने के लिए समय निकालना चाहिए, तो कहेंगे फुर्सत ही नहीं है, हम तो इतना बिजी हैं। बिजी किसमें हैं? और अभी देख लिया कि परिणाम क्या हो रहा है, नोटबंदी हो गई तो जितना ज्यादा कमा के जमा किया हुआ था वो सब कहाँ चला गया। तो इसीलिए बाबा ने तो बहुत पहले कह दिया किसकी दबी रही धूल में, हाँ जब अंत समय आएगा तो क्या होगा, किसकी दबी रही धूल में। कई तो ऐसे हैं जो अपने धन को दिखा ही नहीं सकते, तो कहाँ रह गया वो, मिट्टी हो गया। और किसकी राजा खाए, हाँ जिसने दिखाया उसका गवर्नमेंट ने ले लिया, चलो 200% टैक्स दे दो, हाँ इतना आपने जमा कर रखा है टैक्स में चला गया, यानी राजा के पास चला गया। हाँ और किसकी आग जलाए, कोई कोई लोग नोटों को जला भी रहे हैं। और फिर सफली हो किसकी, जो खर्चे नाम धनी के। तो जिन्होंने बाबा के ईश्वरीय सेवा के कार्य में धन को सफल किया है वो तो जन्म जन्मांतर की इंश्योरेंस कर लिया आपने, वो अविनाशी इंश्योरेंस आपकी है। तो इसीलिए बाबा ने हमें श्रीमत दी कि ना बहुत अधिक ना बहुत कम, किस स्थिति में रहना है, मध्यम स्थिति में रहना है। आज के जमाने में जिसके पास बहुत अधिक धन है वो भी सुख चैन की नींद नहीं सो सकता, और जो गरीब है वो भी सुख चैन से नहीं रह पाता क्योंकि उसकी भी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। हाँ महंगाई है, अब इतनी अपना अनाज है, दालें हैं, सब्जियां हैं, वो सब लाएं, परिवार का पेट भरें, परिवार की पालना करें, उसमें ही उस कशमकश में ही जीवन गुजरता है अगर बहुत गरीब हैं तो। और अगर बहुत अधिक अमीर हैं तो अब धन को ठिकाने कैसे लगाएं, उसकी सुरक्षा कैसे करें, उसे चोरों से कैसे बचाएं, उस चिंता में तो हम सब बचे हुए हैं कि नहीं बचे हुए हैं। तो हमको बाबा ने कहा कि आप बाबा के पद्मा पदम पति बच्चे हो, हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले हो। बाबा की याद में जो कदम हमने उठाया उस हर कदम में पद्मों की कमाई है। ऐसी कमाई कोई बिजनेसमैन इस दुनिया में नहीं कर सकता, और ये कमाई कोई ना तो गवर्नमेंट ले सकती है और ना ही कोई चोर लूट सकता है। हाँ ले सकती है ये कमाई हमारी गवर्नमेंट, हम हर कदम में पद्मों की कमाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कमाई है जो कोई नहीं लूट सकता। तो वो कमाई मुझे करनी है, और हमारी आवश्यकताएं बाबा सहज पूरी करता है। बाबा कहते हैं अगर आप सच्चे ब्राह्मण हैं तो अंत तक दाल रोटी की कमी आपको नहीं होगी। हाँ आपके नामधारी जो ब्राह्मण हैं आज के जमाने में वो भी कमा के खा रहे हैं, जो नाम की कमाई करने वाले हैं नामधारी ब्राह्मण, वो भी, उनको भी भगवान के नाम से बहुत इनकम हो जाती है, और शायद जो लोग काम करके खाते हैं उनसे ज्यादा इनकम उनकी भगवान के नाम से हो जाती है। तो हम तो सच्चे ब्राह्मण हैं तो क्या हमें बाबा नहीं खिलाएगा, जरूर। तो इसीलिए जो धन के कारण थोड़े बहुत पेपर आते हैं हमारे सामने, हाँ अभी भी हो सकता है हमें लाइनों में खड़ा होना पड़ा होगा, जैसे और सब लोगों को भी लाइनों में खड़ा होना पड़ा है, चाहे वो एटीएम में हो चाहे वो बैंक में है, लेकिन हमें पता है कि ये सब तो अंतिम समय में परीक्षाएं हमारे सामने आने ही वाली हैं, और जितना हम अचल अटल अडोल किसी भी पेपर में रहेंगे उस पेपर को पास करने में हमारी कमाई है। लेकिन जो दुनिया की छोटी मोटी हद की इच्छाएं होती हैं, अब मोबाइल है जैसे आज के जमाने में, और हर एक दो महीने में नए नए मॉडल का मोबाइल निकलता है, या गाड़ी चाहिए या लैपटॉप चाहिए या जो भी है ना, वो टैबलेट आता है हाथ में, ऐसी कोई कोई चीजें जो आज के साधन हैं। अब घर में चाहे आपको नहीं चाहिए तो आपके बच्चों को चाहिए, जो भी है। तो कई बार हम इतने सक्षम होते हैं कि वो सब चीजें अफोर्ड कर लेते हैं और कोई हमें परेशानी नहीं होती, पर कई बार हम इतने सक्षम नहीं हैं आर्थिक रूप से कि हम वो सब कर पाएं। तो ये छोटी छोटी हद की इच्छाएं अगर मेरी पूरी नहीं हो रही तो क्या हम असंतुष्ट हो जाते हैं, ये अपने आप को चेक करना है। क्योंकि ये इच्छाएं बाबा कहता है परछाई के समान है, आप जितना उनके पीछे जाएंगे परछाई कभी पकड़ में नहीं आती। मतलब कहने का ये है कि एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी शुरू हो जाएगी। चलो अभी मेरे पास जो मैंने चाहा था आवश्यकता पूरी करने के लिए बाबा बंधा हुआ है। मानो आपके पास मोबाइल नहीं है और आपकी जरूरत है तो जरूर आपके लिए मोबाइल का अरेंजमेंट हो जाएगा, कैसे ना कैसे एक मोबाइल आपके हाथ में है। पर अब आपकी इच्छा हो गई नहीं है, जो नए मॉडल का स्मार्टफोन निकला है अब ये मेरे हाथ में होना चाहिए, तो अब ये क्या है, आवश्यकता पूरी होने के बाद चलो वो भी आ गया मानो, अब और दूसरी इच्छा आ गई। हाँ मोटरसाइकिल है लेकिन कार होती तो ज्यादा अच्छा है। फिर तो उन इच्छाओं का कहीं अंत नहीं है, तो यही बाबा ने कहा कि इच्छाओं के पीछे जाएंगे तो कभी संतुष्ट नहीं रह सकते। लेकिन यदि हम सूर्य के सामने चलते हैं तो परछाई अपने आप पीछे पीछे आती है, यानी रोशनी के सामने अगर आपका मुंह है तो परछाई को पकड़ने की जरूरत नहीं है, परछाई ही आपके पीछे पीछे आती है। तो अगर बाबा के साथ हमारा योग है, ज्ञान सूर्य के सम्मुख हम हैं, तो प्रकृति खुद ही दासी होती है, हमें मांगने की जरूरत नहीं, इच्छा करने की भी जरूरत नहीं। तो हद की इच्छाओं के पीछे अपनी बुद्धि को नहीं लगाना है। इसीलिए बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या। हमें बेहद की प्राप्ति, उस समय हम बेहद की प्राप्ति को याद करें कि कितना बाबा ने हमें बेहद ज्ञान का खजाना दिया है, कितने सुमान दिए हैं बाबा ने, कितनी अविनाशी प्राप्ति हमें होने वाली है जन्म जन्मांतर की, हम कितने ऊंच देवता बनने वाले हैं और कितने हम पद्मा पदम पति बनने वाले हैं, तो उसके आगे ये हद की प्राप्ति बहुत छोटी लगेगी। तो इसीलिए धन के भी जो पेपर आते हैं वो हमें असंतुष्ट ना करे, भले आएंगे क्योंकि समय ऐसा है कि धन की भी खींचातान हो सकती है, सभी को नहीं लेकिन किसी किसी को ये स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। और फिर संबंधों में यदि हम देखते हैं तो भविष्य के संबंध तो श्रेष्ठ हैं ही, दैवी संबंध हैं, लेकिन वर्तमान में भी बाबा ने हमें इतना श्रेष्ठ दैवी परिवार दिया है, पूरे 84 जन्मों में इस समझ से हम आपस में मिलते हैं कि हम वही कल्प पहले वाली आत्माएं हैं जो सतयुग में त्रेता युग में साथ में रहे हैं, अनेक जन्मों तक 84 जन्मों तक हमारे सफर में हम कहीं ना कहीं मिलते रहे हैं। और इतना श्रेष्ठ परिवार जिसे बाबा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बना रहा है, लेकिन फिर भी हम जब आपस में संबंधों में आते हैं लौकिक अलौकिक परिवार में तो कहीं ना कहीं असंतुष्ट होते रहते हैं। कई कारण बनते हैं संबंधों में असंतुष्ट होने के, ज्यादातर हम दूसरों से असंतुष्ट होते हैं, हालांकि बाबा ने कहा है स्व परिवर्तन करना है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, मुझे नहीं, हम भी भूल जाते हैं मुझे नहीं इसको बदलना चाहिए, इसके अंदर ये कमी है, इसको ध्यान देना चाहिए, इसको कितनी बार समझा दिया फिर भी ये वही गलती करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, उनके अवगुण देखने लग जाते हैं, उनकी कमियां देखने लग जाते हैं। और जब अवगुण और कमी हम देखेंगे तो क्या होगा, संतुष्ट होंगे असंतुष्ट होंगे, उनसे हम असंतुष्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे वो अवगुण कमियां नफरत का रूप लेने लग जाती हैं, उनके प्रति मन में नफरत की भावना आ जाती है। तो बाबा ने हमें संबंधों के लिए विशेष श्रीमत क्या दी है, क्या बनना है, हमें गुणग्राही बनना है। इस परिवार में मैंने हर आत्मा को उसके किसी विशेष गुण से लाया है, बाबा ने कहा एक गुण भी था उसमें, उसके कारण बाबा ने चुना है। 35 अवगुण थे लेकिन एक गुण था। हम क्या करते हैं, 35 गुण होंगे अगर एक अवगुण होगा तो उसको पकड़ लेंगे। होता है ऐसे, है ना, कि इतने गुण हैं वो मुझे नहीं दिखाई दे रहे लेकिन उसका एक अवगुण है। ऐसे एक साइकोलॉजी का टेस्ट बताते हैं कि एक बार एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने क्लास के स्टूडेंट्स को एक व्हाइट पेपर, उसमें एक कोने में एक छोटा सा काला स्पॉट लगा हुआ था, वो पेपर दिखाया और पूछा बच्चों ये क्या है। तो 99% बच्चों ने कहा कि सर ये एक व्हाइट पेपर पर काला डॉट लगा हुआ है। जैसे कहते हैं ना, सफेद कपड़ों पर अगर एक छोटा भी दाग होगा तो बहुत क्लियर दिखाई देता है। तो ऐसे ही बच्चों ने जवाब दिया। सिर्फ एक ने कहा कि सर ये व्हाइट पेपर है और उस पर एक छोटा सा काला स्पॉट है। तो ज्यादातर लोगों ने पहले क्या देखा, वो काला दाग देखा, वो व्हाइट पेपर नहीं दिखाई दिया, जबकि 99% वो व्हाइट पेपर है, जस्ट एक कुछ पॉइंट परसेंटेज में वो काला दाग लगा हुआ है। तो ये हमारा स्वभाव होता है कि हम दूसरों की कमियों को ज्यादा देखते हैं और उनके जो गुण हैं उन गुणों पर भी हमारी दृष्टि नहीं जाती है। तो ये अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना है, ये पुरुषार्थ हमारा हमें अभी करना होता है कि हमें आत्मा के गुणों को देखना है, उसकी विशेषताओं को देखना है। तो फिर उसके अंदर कमियां भी होंगी, अवगुण भी होंगे, तो भी हम उनसे संतुष्ट रहेंगे और उनके गुणों और विशेषताओं को हम कार्य में लगा सकेंगे। और यदि हमें उनसे सेवा लेनी है तो उन्हीं गुणों और विशेषताओं के आधार पर हम उनसे सेवा भी लेंगे। कई बार लौकिक परिवार में अगर वो हमें सहयोग नहीं देते हैं, हम ज्ञान में चलते हैं लेकिन वो ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो ये विघ्न तो लगभग सभी को पास करना होता है। तो उस समय भी ये समझ कि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर एक का अपने अपने समय पर पार्ट है। यहाँ भी हमें साक्षी होकर पार्ट बजाना पड़ता है क्योंकि इस ड्रामा में सभी आत्माओं का वैरायटी पार्ट है। एक वृक्ष के सभी पत्ते एक जैसे नहीं होते हैं, तो हमें उनके पार्ट को समझना है और फिर भी उनके प्रति मेरी शुभ भावना रहे, श्रेष्ठ भावना रहे, रहम की भावना रहे, चाहे वो हमसे कैसा भी व्यवहार करते हैं, सहयोग नहीं देते हैं, विघ्न डालते हैं, अपमान करते हैं, कई बार अपशब्द भी कहते हैं। सबसे ज्यादा जो मनुष्य को चुभता है वो अपमान, इसने मेरा अपमान किया, इसने मुझे ऐसा कहा, और इतना दुखी होते हैं हम, असंतुष्ट हो जाते हैं उनके व्यवहार से, हमें पसंद नहीं आता है कि व्यक्ति मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, और फिर हम भी उनके जैसे ही बन जाते हैं, यानी उनको बददुआएं देने लगते हैं कि मुझे भी इनके साथ कैसा करना चाहिए, अगर ये मेरे साथ ऐसा करे। दुनिया में लोग जैसे को तैसा देना सही मानते हैं, अगर इसने मेरे को दो बोला तो मुझे कितना बोलना है, चार, चार का आठ कर देंगे। तो चलो हम ब्राह्मण ऐसा तो नहीं करते हैं, दो का चार और चार का आठ नहीं करते हैं, लेकिन मन ही मन बोलेंगे नहीं, शांत रहेंगे, ज्यादा मुख से नहीं बोलते हैं, पता है बोलेंगे तो वही हमको कह देंगे कि तुम तो आश्रम पर जाते हो, क्या यही ज्ञान सुनकर आते हो। हाँ, तो बाबा का नाम तो नहीं बदनाम करेंगे क्योंकि इससे तो बाबा की बदनामी होगी, तो चुप रहेंगे जरूर, लेकिन मन में वो फिर भी उनके प्रति शुभ भावना रहे, रहम की भावना रहे, वो मुश्किल हो जाता है। तो ये शक्ति अपनी बढ़ानी है हमें कि कोई आत्मा कैसा भी व्यवहार मेरे साथ कर रही है वो मेरा हिसाब किताब है। ये भी बाबा ने हमें समझाया है कि अनेक जन्मों से हम साथ में चले हैं तो हिसाब किताब बने हुए हैं, और ये अंतिम जन्म है तो ये सारे रजिस्टर हमें अभी साफ करने हैं। हो सकता है कि मैंने उसको दुख दिया होगा, पूर्व जन्म में मैंने उस आत्मा को दुख दिया है, पूर्व जन्मों में, इस जन्म में नहीं किया होगा लेकिन पूर्व जन्मों में मैंने भी उसका अपमान किया होगा, तो वो आत्मा अपना हिसाब किताब अभी पूरा कर रही है। तो यदि मैंने शुभ भावना रखी तो वो वहीं खत्म, कर्जा वहीं खत्म। पर यदि मेरी शुभ भावना नहीं रही, दुर्भावना हो गई, तो मैंने 100 गुना अपने हिसाब किताब को बढ़ा लिया। ब्राह्मण बनने के बाद भी बाबा की श्रीमत के अनुसार अगर मेरा कर्म नहीं हुआ तो बाबा कहता है 1 का 100 गुना होता है, दूसरों का हिसाब 1 का 1 गुना होता है, लेकिन हमारा क्या होता है, 100 गुना हो जाता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। हम दूसरों से कई बार बहुत तुलना करते हैं, ना तब असंतुष्ट होते हैं। ड्रामा में हर एक का अपना पार्ट है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। अगर हम दूसरों से तुलना करेंगे तो क्या हम उनके जैसे बन जाएंगे? कई बार हम ये भी देखते हैं, हाँ हम सेंटर पर आते हैं, सेवा में सहयोग देते हैं बहुत, लेकिन बहन जी ने तो मुझे पूछा ही नहीं, हाँ मैंने इतना अपना समय दिया। या फिर हम सोचते हैं कि दूसरों के साथ, दूसरों को चांस मिलता है और मुझे तो चांस नहीं मिलता है, तो हम जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उनसे भी किसी ना किसी कारण से असंतुष्ट होने लगते हैं। पार्शलिटी हमें दिखाई देती है कई बार, पक्षपात हो रहा है। अगर बड़े हैं या छोटे हैं, हम किस स्तर पर हैं उस अनुसार हम अपेक्षाएं रखते हैं, और यदि हम बहुत अपेक्षाएं रखते हैं और वो हमारी पूरी नहीं होती, ज्ञान के अनुसार हमारी अपेक्षाएं भी ऊंची हो जाती हैं कि अगर ये ज्ञानी हैं तो इनको कैसा कैसा करना चाहिए, और यदि वो वैसा नहीं कर रहे, चाहे वो हमारी टीचर बहन ही है या जो भी हमारे से सीनियर हैं, अगर वो वैसा नहीं कर रहे, ज्ञान में बहुत पहले से चलते हैं, हम तो अभी आए हैं, तो क्या हो जाता है, हम असंतुष्ट होने लगते हैं कि देखो ये भी ऐसा करते हैं। तो भी हमें ये समझना है, हर आत्मा पुरुषार्थी है, और हम इतनी अपेक्षाएं क्यों रखें? हमें किसी से अपेक्षा नहीं रखनी, हमारी अपेक्षाएं आशाएं पूरी करने वाला कौन है? बाबा है। अगर टीचर मेरा नाम नहीं ले रही, अगर टीचर मुझे मान नहीं दे रही, मानो, या जिनसे भी हम अपेक्षा रखते हैं, वो मेरे परिवार वाले हैं, अगर वो नहीं कर रहे तो हमारा नाम कौन ले रहा है, हमारा नाम कौन जपता है? स्वयं भगवान हमारा नाम जपता है, हम उसकी लिस्ट में हैं। तो अगर दुनिया वालों ने मेरा नाम नहीं भी लिया, आप उनकी लिस्ट में हैं, तभी तो उन्होंने आपको चुना है ना। एक कहानी भी आती है इसके ऊपर कि एक बार विष्णु जी अपनी शेष शैया पर लेटे हुए थे और कुछ डायरी थी उनके हाथ में। नारद जी पहुंचे, वो तो कभी भी पहुंच जाते थे, तो उन्होंने देखा कि भगवान अपनी डायरी पढ़ रहे हैं, आज क्या बात है? तो उन्होंने पूछा, भगवान क्या कोई विशेष बात है आज आप डायरी पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ नारद, मैं आज अपने उन भक्तों की लिस्ट देख रहा हूँ जो मुझे बहुत याद करते हैं। तो नारद जी ने सोचा, मैं तो बहुत याद करता हूँ भगवान को, तो मेरा नाम तो जरूर होगा इसमें। तो वो देखने लगे, झांक कर, मेरा नाम कहाँ है? तो देखा उनका नाम सबसे ऊपर था लिस्ट में, तो वो बहुत खुश हो गए। फिर देखा सबसे नीचे किसका नाम है, सबसे नीचे कौन सा भक्त है? तो देखा हनुमान जी का नाम सबसे नीचे था। अब उनको तो है ना, उनकी तो आदत है इधर की उधर करने की। तुरंत पहुंच गए हनुमान जी के पास कि देखा भगवान के पास मैंने वो लिस्ट देखी, उसमें मेरा नाम सबसे ऊपर और आपका नाम सबसे नीचे, मतलब उनको थोड़ा सा चिढ़ाने के हिसाब से। तो हनुमान जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान की लिस्ट में मेरा नाम कहाँ है, भगवान तो मेरे दिल में है, मतलब इतनी याद मेरे मन में है कि वो तो मेरे दिल में है। फिर दूसरे दिन जब वो गए तो देखा आज भी उनके हाथ में एक डायरी है और वो पढ़ रहे हैं। तो फिर पूछा नारद ने कि भगवान आज आप कौन सी डायरी देख रहे हैं, कल भी आप देख रहे थे, आज भी देख रहे हैं? तो बोला आज मैं वो डायरी देख रहा हूँ जिनको मैं बहुत याद करता हूं। हाँ, पहले थी कि वो मुझे याद करते हैं। तो बोला अच्छा। हाँ, फिर नारद ने झांक के देखा मेरा नाम कहाँ है, तो उसमें हनुमान जी का नाम सबसे ऊपर और नारद जी का। तो दुनिया में लोग भगवान को बहुत याद करते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबा, जब भी बाबा आते हैं तब वो क्या बोलते हैं, बाबा के दिल में कौन समाये हुए हैं, तो बाबा हमको भी बहुत याद करते हैं। तो जब भगवान के दिल पर हमारा नाम है तो फिर दुनिया में किसी ने हमारा नाम लिया या न लिया, जिसे कहा बेहद की प्राप्ति के आगे हद की प्राप्ति को हमें याद नहीं करना है। मान भी जो स्वमान भगवान ने दिया है, दुनिया में कोई हमें ऐसा स्वमान नहीं दे सकता। हम कौन हैं? बाबा के बच्चे, दिल तप्त नशीन हैं बाबा के। हम कोठों में कोई में भी कोई चुने हुए रतन हैं, पद्मा पदम भाग्यवान हम आत्माएं हैं, ब्राह्मण कुलभूषण हैं, स्वदर्शन चक्रधारी हैं, और भगवान के कार्य में भगवान के साथ सहयोगी, विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी, विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, पूर्वज, इतने बड़े टाइटल बाबा कहता है। दुनिया में किसी के पास भी चले जाओ, कितना भी बड़ा वीवीआईपी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा राष्ट्रपति हो किसी देश का, है किसी को ऐसे टाइटल? तो फिर हम अपना जो स्वमान है वो जब भूल जाते हैं तो फिर हद के मान की इच्छा हमें असंतुष्ट करती है कि देखो इनको तो इतना मान मिलता है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, इनको तो इतना प्यार मिलता है, मुझे तो कौन प्यार करता है, कौन मान दे रहा है। और यदि चाहिए तो दो, बाबा ने विधि बताई है, अगर आपको मान चाहिए तो मान दो, आप सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। आज दुनिया में लोगों के पास है ही नहीं ना, वो देंगे क्या आपको? हाँ, कहते ना सबकी बैटरी डिस्चार्ज है, तो जब उनमें खुद में ही सुख नहीं है, खुद में ही प्यार नहीं है, तो वो आपको क्या देंगे? आप तो प्यार के सागर से भरपूर हो, आपको तो प्यार का सागर प्यार लुटा रहा है, उसका प्यार पाके हमें दूसरों को पहले प्यार देना है, तो अपने आप हमें वो रिटर्न मिलेगा। इसीलिए कहते हैं लव बिगेट्स लव, रिस्पेक्ट बिगेट्स रिस्पेक्ट। तो नाम मान शान की वो जो सूक्ष्म इच्छा आपसी संबंधों में होती है और उसके कारण हम दूसरों से तुलना करते हैं, तो वो तुलना अगर हम करेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं रह सकते। अगर तुलना करना ही है तो अपनी तुलना अपने आप से करो, मेरे जीवन में मेरे पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है, मुझे तीव्र पुरुषार्थी बनना है, बाप समान बनना है, कर्मातीत बनना है। आज हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं कल मेरा पुरुषार्थ उससे बेहतर है? जैसे मम्मा कहती थी कि जो गलती एक बार हो गई वो दोबारा रिपीट ना हो, उसको कहेंगे पुरुषार्थी। तो मेरे जीवन का पुरुषार्थ वो मुझे देखना है, न कि दूसरों को मुझे देखना है। स्व चिंतन करना है, आत्म चिंतन करना है, पर चिंतन में नहीं जाना है। यदि हम पर दर्शन पर चिंतन में जाएंगे तो असंतुष्ट हम जरूर हो जाएंगे। तो हमें तन मन धन संबंध, ये चारों ही प्राप्तियां वर्तमान में भी हमें कैसे प्राप्त हो जाए, वो ज्ञान वो समझ बाबा ने हमें दिए है। और बाबा हमें कहते हैं हमेशा प्राप्तियों का स्मरण करो, कभी भी जीवन में अपनी कमियों का स्मरण नहीं करो। हो सकता है कोई कमियां हैं हमारे अंदर, संस्कार हैं जिसके लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन वो संस्कार दूर नहीं होते हैं तो हम अपने आप से ही असंतुष्ट हो जाते हैं। दूसरों से असंतुष्ट होते हैं वो तो है ही है, लेकिन अपने से भी संतुष्ट रहना, तो स्वयं के पुरुषार्थ से संतुष्ट रहना। कमियों को दूर करने में हमें कुछ समय लगता है, इसीलिए तो बाबा ने हमें इतना समय दिया है। क्रोध का संस्कार है, मैं इतनी समय से मेहनत कर रही हूँ, लेकिन फिर भी नहीं चाहती हूँ, फिर भी गुस्सा कर लेती हूँ। होता है, कई लोग सोचते हैं, कई लोग हमसे कहते हैं आकर के, बहन जी गुस्से का संस्कार नहीं जाता है। जब गुस्सा कर जाते हैं तब पश्चाताप होता है कि ये तो मेरे को गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ये तो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, या नाराज होने का संस्कार, हर अलग अलग तरह के मूड ऑफ करने का संस्कार, कई प्रकार के हमारे अपने संस्कार, देह अभिमान में आने का संस्कार, मैंपन का संस्कार, हाँ मेरी थोड़ी सी बात नहीं मानी, हाँ हम तुरंत उस पर रिएक्ट करते हैं, रोग जमाने का संस्कार, कई प्रकार के हमारे जो देह अभिमान के संबंध के संस्कार होते हैं, तो हम अपने पुरुषार्थ से ही कई बार असंतुष्ट होने लगते हैं। हम अमृत वेले रोज उठना चाहते हैं लेकिन किसी दिन उठ जाते हैं, किसी दिन नहीं उठ पाते हैं। जितना पावरफुल योग लगाना चाहते हैं उतना पावरफुल योग नहीं लगता है। फिर दिल शिकस्त होने लगते हैं, अगर असंतुष्ट हो गए अपने आप से तो क्या होने लगेंगे, निराश होने लगेंगे अपने ही पुरुषार्थ से। फिर धीरे धीरे हम शिव बाबा से भी असंतुष्ट होने लगते हैं, हाँ भगवान से भी नाराज होने लगते हैं कि भगवान ड्रामा में मेरा ऐसा पार्ट बनाया, हाँ मेरे को इतना देरी से ज्ञान में क्यों लाया। होता है कभी बोलते हैं बाबा को तो बाबा को उलाहना देते हैं थोड़ा, हाँ जैसे खुशी से अगर हमने उलाहना दिया वो अलग बात है, लेकिन ड्रामा में अपने पार्ट को देख करके बाबा से ही असंतुष्ट तो ना स्वयं के पुरुषार्थ से असंतुष्ट होना है और ना ही बाबा से, क्योंकि जो भी ड्रामा में हमारा पार्ट है वो हमारे अपने कर्मों से बना हुआ पार्ट है और वो निश्चित है। और बाबा ने जो हमें दिया है वो तो सब कुछ, जिस खड़ी हमारा उस ये अलौकिक जन्म हुआ है वो सब कुछ बाबा ने हमें दे दिया, हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं और कितना यूज कर रहे हैं। तो ज्ञान के मनन चिंतन को हम बढ़ाएं और हम अपने से जो वरिष्ठ हैं, जो हमसे पुरुषार्थ में बहुत अच्छे हैं, या जो हमारी दादियां हैं, जिनसे भी हम सहयोग ले सकते हैं अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए, उनसे हम सहयोग लें, उनसे हम पूछें कि आपने अपनी कमियों को कैसे जीता, हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम अपनी इन कमियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें मार्गदर्शन मिल जाएगा और हम उस उलझन से मुक्त हो जाएंगे। तो जहां भी हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो जिसका भी हम सहयोग लेना चाहते हैं, अब आजकल तो पीस ऑफ माइंड टीवी पर भी बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते हैं जिसमें बहुत अच्छे प्रोग्राम्स से हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है, तो अपने पुरुषार्थ को हम सहज आगे बढ़ा सकते हैं, सहज हम उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं। और जितना बाबा की याद में हम रहते हैं उतना बाबा से भी हमें शक्ति मिलती है, हम हिम्मत रखते हैं तो बाबा हमें मदद करते हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप, ये बाबा ने हमें कहा है। तो स्वयं से संतुष्ट, सर्व से संतुष्ट और बाबा से भी संतुष्ट और ड्रामा से भी संतुष्ट, तो जो हर परिस्थिति में संतुष्ट है, बाबा कहता है वो सदा प्रसन्न चित होगा, उसके मन में कोई प्रश्न नहीं होंगे। जो सभी राजों को जानते हैं वो कभी नाराज नहीं होते, असंतुष्ट होना माना नाराज होना। तो जिसने ड्रामा के तीनों कालों के आत्मा के परमात्मा के राजों को समझ लिया वो कभी भी नाराज नहीं होते। और अगर हम नाराज हो रहे हैं इसका मतलब कोई ना कोई राज हम मिस कर रहे हैं, वो राज से हम वंचित हैं जिसके कारण हम नाराज हो रहे हैं। तो राजी रहने वाले बाप के बच्चे, बाबा कहता है जैसे संतोषी माता का गायन है, संतोषी माता का पूजन ही क्यों होता है, क्योंकि संतोष के गुण के लिए, और वो हमारी ही यादगार है, वो और कोई संतोषी देवी नहीं है, लेकिन वो कौन है? हम ही हैं जिनके यादगार ये बने हुए हैं। तो संतुष्टता जो ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, प्रॉपर्टी है, उसे हमें वर्तमान में भी पूरी तरह से अनुभव में लाना है, और फिर जन्म जन्मांतर भी वो हमारे साथ चलने वाली है। ओम शांति।
समाई हो बाबा, भूल सकते नहीं।